Iran Radio Podcast.
औपनिवेशिक युग की शुरुआत से लेकर 19वीं शताब्दी तक गन्ने और कपास के खेतों में काम करने के लिए लाखों गुलामों को अफ्रीका से अमेरिका ले जाया गया। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 57वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। तो हम बात कर रहे थे औपनिवेशिक युग की और कपास और गन्ने की खेती के बारे में। इन गुलामों को इंसानों तक का दर्जा हासिल नहीं था, यहाँ तक कि बीमा कंपनियाँ भी उनकी मौत की स्थिति में उन्हें एक इंसान मानने के लिए तैयार नहीं थी। क्रिस्टोफर कोलंबस और उसके सैनिकों द्वारा अमेरिका के मूल निवासियों को लगभग समाप्त कर देने के बाद लाखों काले गुलामों को अमेरिकी बाजारों में बेचा गया। कई वर्षों तक दास व्यापारियों और बीमा कंपनियों के बीच इस बात पर बहस होती रही कि ये गुलाम इंसान भी हैं या नहीं। सच्चाई ये थी कि इन गुलामों को एक वस्तु के तौर पर देखा जाता था, उन्हें ऐसी मशीन समझा जाता था जिनका इस्तेमाल सिर्फ अपने मालिकों के लाभ के लिए किया जाता है। इन गुलामों को न केवल बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया था, बल्कि उनका जीवन पूरी तरह से उनके गोरे मालिकों के हाथ में था। 1863 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गृह युद्ध के दौरान गुलामी के कानून को ख़त्म करने की घोषणा कर दी। दो वर्षों से अमेरिका के दक्षिणी और उत्तरी राज्य भीषण युद्ध की आग में जल रहे थे। दक्षिणी राज्यों ने शारीरिक रूप से मजबूत अपने गुलामों का इस्तेमाल लड़ाई में किया और वे जीत की कगार पर पहुँच गए। गुलामों को आज़ाद करने वाले कानून की घोषणा से दक्षिणी राज्यों के हाथों से युद्ध का ये शक्तिशाली हथियार निकल गया। आज़ादी की आशा में बड़ी संख्या में काले लोग दक्षिण से उत्तर की ओर भागे, जिसके कारण दक्षिणी राज्यों की जीत हार में बदल गई। इस कानून के पारित होने का मतलब अमेरिका में नस्लीय भेदभाव का अंत नहीं था। इसके बाद के दशकों और सदियों में कालों को भेदभाव और नस्लवाद से संघर्ष करना पड़ा। जिम क्रो कानून अमेरिकी सरकार द्वारा अश्वेतों और श्वेतों को व्यवस्थित रूप से अलग करने और श्वेत वर्चस्व को बनाए रखने के लिए लाया गया था। जिम क्रो कानून 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक लागू रहा। इस कानून का मुख्य उद्देश्य समाज में अश्वेतों की भागीदारी को रोकना और श्वेतों की नस्लीय श्रेष्ठता बनाए रखना था। इस कानून के प्रभाव अश्वेतों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के सभी पहलुओं में फैले हुए थे। इससे उनके दैनिक जीवन में कई पहलुओं पर बड़ा नकारात्मक असर पड़ता था। इन कानूनों के अनुसार श्वेत और अश्वेतों के बीच विवाह अवैध था और इसके लिए कारावास या आर्थिक जुर्माना जैसी सजा का प्रावधान था। काले स्कूलों को आधिकारिक तौर पर श्वेत स्कूलों से अलग कर दिया गया था और उनमें सुविधाएँ और शैक्षिक गुणवत्ता बहुत कम थी। अश्वेत उन पार्कों, सिनेमाघरों, रेस्तरानों और पुस्तकालयों का उपयोग नहीं कर सकते थे जो श्वेतों के लिए मखसूस थे। यहाँ तक कि सार्वजनिक परिवहन में भी अश्वेतों को बसों या रेलगाड़ियों में श्वेतों से अलग पीछे बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। उच्च वेतन वाली नौकरियाँ अश्वेतों के लिए आरक्षित थीं और अश्वेतों को अवसर खेतों, कारखानों और खदानों में काम करने के लिए ही मिलता था। जिम क्रो कानून के तहत अश्वेतों को दशकों तक मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया था। कुछ राज्यों में साक्षरता परीक्षण या मतदान कर जैसे जटिल कानून लागू थे, जिनकी वजह से अश्वेत मतदान नहीं कर सकते थे। सन 1955 की बात है, अलबामा के मोंटागोमरी शहर में रहने वाली रोजा पार्क्स नाम की एक साधारण सी अश्वेत महिला, जो दर्जी का काम करती थी, बस में सवार थी। उसने अपनी सीट एक श्वेत व्यक्ति को देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इस जुर्म से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस साधारण विरोध प्रदर्शन के कारण शहर में बसों के बहिष्कार की स्थिति उत्पन्न हो गई। शहर के अश्वेतों ने बसों का बहिष्कार करने और इसके स्थान पर टैक्सी, साइकिल या पैदल चलने का फैसला किया। कुछ अश्वेतों को लंबी दूरी तक पैदल चलना पड़ा, लेकिन उस दौरान अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए लोगों की दृढ़ता और साहस बेमिसाल था। बस बहिष्कार ने न केवल मोंटगोमरी को परिवहन की व्यवस्था से पंगू कर दिया, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया। शुरू में जो एक साधारण संघर्ष प्रतीत हो रहा था, वो एक विशाल आंदोलन में बदल गया, जो 28 बल्कि 38 सप्ताह तक चला। इस ऐतिहासिक प्रतिरोध का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर नाम के एक अश्वेत पादरी ने किया, जिनकी उम्र उस समय सिर्फ 26 वर्ष थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के नेता गांधी जी के अहिंसावादी आंदोलन से प्रेरित होकर लूथर किंग ने अमेरिका में नस्लीय भेदभाव से लड़ने के लिए शांतिपूर्ण मार्ग और सविनय अवज्ञा को चुना। उन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन की स्थापना की और कई मार्चों और हड़तालों का उन्होंने नेतृत्व किया। 1950 और 1960 के दशक में किंग और नागरिक अधिकार आंदोलन के अन्य नेताओं के सामने मुख्य मुद्दों में से एक महत्वपूर्ण मुद्दा स्कूलों में नस्लीय अलगाव का कानून था। कालों के लिए स्कूल अलग थे और वो श्वेत स्कूलों से काफ़ी पिछड़े हुए थे, जिसका मकसद कालों को उच्च शिक्षा तक पहुंचने से वंचित रखना था। 1954 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को सार्वजनिक स्कूलों में नस्लीय अलगाव को अवैध घोषित करने के लिए बाध्य होना पड़ा, लेकिन इस निर्णय के कार्यान्वयन को दक्षिणी राज्यों में कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। मार्टिन लूथर किंग और अन्य नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए सविनय अवज्ञा और शांतिपूर्ण विरोध का सहारा लिया। उन्होंने इस फैसले को लागू करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण रैलियों का आयोजन किया। जब काले छात्रों को पहली बार श्वेत स्कूलों में दाखिला लेने की अनुमति दी गई, एक अश्वेत परिवार ने अपने बच्चे को स्कूल भेजने की पहल करने का निर्णय लिया। शार्लोट की रहने वाली 15 वर्षीय अश्वेत लड़की डोरोथी कैंट्स के परिवार ने उसे पंजीकरण के बाद स्कूल वर्ष के पहले दिन ही स्कूल भेज दिया। डोरोथी और उसके पिता को छात्रों की ओर से विरोध और अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन वो उस भीड़ के बीच से निकलकर स्कूल में गए जो उनका अपमान कर रही थी। उस दिन नस्लवादी श्वेत लोगों ने डोरोथी और उनके पिता पर पत्थर फेंके, उन पर और उनके लंच बॉक्स में थूका, यहाँ तक कि उन्हें स्कूल से बाहर निकालने की भी कोशिश की। इसके बाद नस्लवादियों ने उनके घर पर फोन करके डोरोथी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। ये विवाद 4 दिन तक चलता रहा, जब तक कि डोरोथी परिवार ये ऐलान करने के लिए मजबूर नहीं हो गया कि उन्होंने अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उसे स्कूल न भेजने का निर्णय लिया है। कुछ समय बाद ये परिवार उत्तरी कैरोलिना से फिलाडेल्फिया चला गया। 1960 के दशक के अंत में मार्टिन लूथर किंग ने दक्षिणी अमेरिकी शहरों में स्थित कालों की बस्तियों और भारी अलगाव वाले क्षेत्रों का दौरा किया। 3 साल बाद लूथर किंग के नेतृत्व वाले आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। 1963 में वॉशिंगटन में अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण रैली का आयोजन हुआ। पूरे अमेरिका से विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के 2,50,000 से ज़्यादा लोगों ने इस मार्च में भाग लिया। किंग ने इस मार्च में अपना सबसे प्रसिद्ध भाषण दिया। ये भाषण मेरा एक सपना है नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के भविष्य की बात की थी। उन्होंने अपनी मधुर आवाज़ में कहा, मेरा सपना है कि एक दिन ये देश लोगों का मूल्यांकन उनके चरित्र और प्रतिभा के आधार पर करेगा, ना कि उनके स्किन के रंग के आधार पर। इस भाषण के बाद अगले 5 साल तक मार्टिन लूथर किंग का संघर्ष इसी तरह जारी रहा, यहाँ तक कि 1968 में जब वो टेनेसी के मेम्फिस में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की तैयारी कर रहे थे, एक आतंकवादी के हमले में मारे गए। उनकी याद में काले और गोरे सभी रोए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। किंग के ये शब्द कि हमें आज़ादी, समानता और न्याय के लिए बिना रुके लड़ना चाहिए, सभी के दिलो दिमाग में उतर गए थे। उनकी बातें प्रतिरोध का प्रतीक बन गईं। वो आज भी दुनिया भर के आज़ादी आंदोलनों की आत्मा में जीवित हैं। जिस समय लूथर किंग सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, उसी समय अमेरिका के एक अन्य कोने में मेलकम एक्स नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे थे। मेलकम को बचपन से ही नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। वो केवल 4 वर्ष के थे जब नस्लवादी घृणा की आग ने उनके घर को जलाकर राख कर दिया। उनका घर जलकर राख हो रहा था, लेकिन श्वेत अग्निशमन कर्मी सिर्फ देखते रहे। 2 साल बाद अमेरिका के चरमपंथी नस्लवादी गुट के ने उनके पिता की हत्या कर दी, जिसके बाद पहले से ही गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे एक्स का जीवन मानो थम सा गया। जब वो लगभग 10 साल के थे तो उनकी मदद करने के बजाय समाज कल्याण विभाग ने उनकी मां को पागलखाने में डाल दिया, जिससे मेलकम का परिवार पूरी तरह उजड़ गया। मेलकम की मां एक एडवेंटिस्ट थी और उनका मानना था कि उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें सुअर का मांस खाने से परहेज करना चाहिए। इसीलिए जब उनके पड़ोसी उनके लिए भिक्षा के रूप में सुअर का कुछ मांस लेकर आए तो उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। ये एक इनकार सामाजिक कल्याण संगठन के अधिकारियों के लिए उन्हें पागल साबित करने और फिर अदालत के आदेश से पागलखाने में भेजने का बहाना बन गया। मेलकम ने खुद इस बारे में लिखा था कि ईमानदारी से मेरा मानना है कि अगर सामाजिक कल्याण संगठन ने कभी किसी परिवार को तोड़ा है तो वह हमारा परिवार है। हम साथ साथ और एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। हमारा परिवार तबाह और टूटना नहीं चाहिए था, लेकिन सामाजिक कल्याण संगठन, अदालत और डॉक्टरों ने बारी बारी हमें मुक्कों से पीटा, लेकिन हम अकेले ही ऐसे नहीं थे जिन्हें इस तरह की स्थिति का सामना था। यह असहाय अश्वेत बच्चा नस्लवादी दरिंदों के चंगुल में फंसा हुआ था, जो उसे बहुत आसानी से अपमानित कर रहे थे, उसे कमतर आंक रहे थे और उसे एक स्वस्थ और स्वतंत्र जीवन के अधिकार से वंचित कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में विद्रोह और हिंसा की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है। धीरे धीरे वो अपराध की ओर मुड़ गए और 14 वर्ष की आयु में उन्हें घड़ी चुराने के अपराध में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन जेल उनके जीवन के लिए एक नई शुरुआत थी। जेल में उनकी मुलाकात ऐसे काले लोगों से हुई जो मुसलमान हो गए थे। उन्होंने उसे धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस्लाम से परिचित होने के कारण वो असहाय अनाथ बच्चा आगे चलकर एक प्रभावशाली और प्रगतिशील नेता बन गया। रिहाई के बाद मेलकम नेशन ऑफ इस्लाम के सदस्य बन गए। उन्होंने अपना अध्ययन और अनुसंधान जारी रखा और इस हद तक प्रगति करते चले गए कि उन्हें इस समूह का प्रवक्ता चुन लिया गया। अमेरिका में उनके धार्मिक और वैचारिक विचार के कारण बड़ी संख्या में अश्वेत लोग इस्लाम से परिचित हुए और मुस्लिम उम्मा संगठन के सदस्य बन गए। मेलकम ने लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के प्रयासों का स्वागत किया और कहा कि काले लोगों को उनके अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए किसी भी संभव तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने जोशीले भाषणों में वो श्वेतों को दुश्मन बताते थे और लोगों को जागरूक करते थे। नेशन ऑफ इस्लाम के लिए नए सदस्यों को संगठित करने और भर्ती करने में मेलकम एक्स के प्रयासों के कारण उनके सदस्यों की संख्या 400 से बढ़कर 30,000 से अधिक हो गई। उसी दौरान मेलकम और नेशन ऑफ मुस्लिम के नेता एलिजा मोहम्मद के बीच मतभेद की खबरें आने लगीं। मेलकम अपने 40वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मक्का गए और हज किया। इस यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र समूह से अलग होकर अपना स्वतंत्र समूह स्थापित किया। बाद में उन्होंने मक्का की ओर अपनी यात्रा के बारे में कहा, नीली आँखों वाले गोरे लोगों से लेकर काले अफ्रीकियों तक हर रंग के मुसलमान को समान रूप से तवाफ करते हुए देखकर यकीन होता है कि इस्लाम नस्लीय समस्याओं पर काबू पाने वाला धर्म है। हज यात्रा से लौटने के कुछ ही महीनों बाद मेलकम मैनहट्टन कन्वेंशन सेंटर में अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, तभी 3 बंदूकधारियों ने उन्हें नज़दीक से 15 गोलियां मारकर छलनी कर दिया। मेलकम की मौत पहली गोली लगने से ही हो गई थी। उस समय उनकी उम्र 40 वर्ष भी नहीं थी। मेलकम उन समस्याओं से उबरना चाहते थे जिन्होंने उनके पिता, माँ और स्वस्थ जीवन के अधिकार को छीन लिया था। ऐसी समस्याएँ जो अमेरिकी समाज में अभी भी मौजूद हैं। अमेरिकी समाज के कई पहलुओं में नस्लीय भेदभाव अभी कम है। 1960 के दशक में नागरिक अधिकार अधिनियम और मतदान अधिकार अधिनियम के पारित होने के बाद नस्लवाद ग्रुप और व्यवस्थित रूप से जारी रहा। इस भेदभाव का सबसे बड़ा प्रभाव गरीबी और आर्थिक असमानता है। अश्वेत लोगों का प्रतिनिधित्व अभी भी उच्च स्तर की नौकरियों और उच्च शिक्षा में काफ़ी कम है। इसके अलावा अमेरिकी समाज में काले लोगों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अब भी कायम है। निम्न आय वाले अश्वेतों को नक्सलवादी और हिंसक पुलिस व्यवहार का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में नस्लीय भेदभाव केवल एक ऐतिहासिक मुद्दा नहीं है जो समाप्त हो गया है। ये भेदभाव शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों में अभी भी देखने को मिल जाएगी। इसी भेदभाव के कारण युवा अश्वेतों को ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलन चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे अमेरिका में नस्लवाद का मुद्दा सुर्खियों में बना रहता है। दोस्तों, जो पॉडकास्ट आपने सुना वो ईरान रेडियो हिंदी द्वारा तैयार किया गया था। अगर आप और भी दिलचस्प विषयों पर पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi को विजिट कर सकते हैं।